नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
ये संस्था में एजुकेशन, इस्कॉन में एजुकेशन, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों से समझना, अंधा बेड़िया गता नहीं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से सब कुछ होना चाहिए, गपशप नहीं। और वो एक ही संस्था है जो यथारूप ज्ञान दे रही है। कई संस्था है ज्ञान दे रहे, लेकिन यथारूप और जो होना चाहिए वैसा ज्ञान नहीं देते। तो हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं, तमसो मा, तो ज्योति में ले तो जाए कोई, सब लोग अंधियारे में ही पड़े रहते हैं। चाहे वो मंदिर जाए या कहीं सत्संग में जाए, लेकिन तम में ही पड़े रहते हैं। ऊपर उठना, तम, तम से ऊपर उठना, उत्तम। तो ये ज्ञान हमें यथारूप शास्त्र, साधु और गुरु के मुताबिक, खाली शास्त्र खाली गुरु भी नहीं चलेगा, साधु भी चाहिए। खाली साधु नहीं चलेगा, गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। तो ये तीनों, शास्त्र, साधु एंड गुरु, ये तीनों एक दूसरों से प्रमाणित होने चाहिए। जैसे मैंने कुछ लिख लिया, एक पुस्तक लिखा, और मैं मेरे शिष्यों को कहता हूँ ये शास्त्र है, लेकिन मैंने लिखा जो शास्त्र में कहलाता हूँ वो शास्त्र दूसरे साधुओं और गुरुओं से प्रमाणित होना चाहिए शास्त्र। तो साधु कौन है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, तुकाराम या नानक देव या सूरदास, मीरा, नरसिंह, ये सब साधु हैं। ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासकी, वयम का अर्थ है यमराज। तो ये सब साधु लोग हैं, ये बार महाजन है, बार महाजन से ही हमारे शास्त्र बने। हमारे शास्त्र किसने बनाए, बार महाजन, कौन से, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म एंड बलि, वैयासकी, सुखदेव और यमराज। ये बार महाजनों, क्योंकि ये बार महाजन श्री कृष्ण के ही भक्त हैं, तो ये ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। बेड सेड या पेड़िया गथा ऐसा नहीं चलेगा। हमारा जो ये जीवन है वो भी हमें कितनी वेतना, कितना दुख, कितना परिश्रम के बाद ये 100 साल अगर मिले तो मिले, 100 साल हमें मिली, और ऐसी तक हम वैसे ही अज्ञानता से, या होता है कभी कभी जभी जभी वैसे गवा दे हम, तो कितना बड़ा घाटा है, कितना बड़ा घाटा, नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। तो ये गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र वो है जो साधु और गुरु से प्रमाणित हो, गुरु वो है जो साधु और शास्त्र से प्रमाणित हो, और साधु वो है जो गुरु और शास्त्र से प्रमाणित हो। प्रमाणित अर्थात मान्य, कि हाँ ये शास्त्र है। गीता और भागवत को, वेद पुराण, महाभारत, इनको कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि शास्त्र नहीं है, स्पेशली भागवत और गीता को, क्योंकि वैदिक साहित्य का ये राइपन फ्रूट, वैदिक साहित्य का अर्क, निचोड़, जो व्यासदेव की मैच्योरिटी में, व्यासदेव का परिपक्व नॉलेज, परिपक्व ज्ञान, ये भागवत, पहले वेद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास लिखा, भारत, सब कुछ लिखने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ और ग्लानी हुई, दुख हुआ। बाद में उनके गुरुदेव कहते हैं कि आपने भगवान और भगवान के भक्तों के प्रेम का जो आदान प्रदान, प्रेम प्रेम अभी तक आपने कोई शास्त्र में बताया नहीं। अभी तक आपने क्या बताया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया। और भागवत में ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निरमत्सराणाम सताम विद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलानाम किम वा पर ईश्वर। दूसरे शास्त्रों की क्या जरूरत है? किम वा पर, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में ही सत्य धर्म, जो कैतव धर्म चीटिंग रिलीजन नहीं है, और निर्मत्सर संतों और भगवान दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। निर्मत्सराणाम सताम, सताम अर्थात संत अथवा साधु भक्त, निर्मत्सर भक्त। तो यहाँ से हमें ज्ञान लेना होगा। पहला सवाल है, तो टाइम ये सनातन है, अर्थात टाइम ये सनातन। भगवत गीता के 5 विषय हैं, उसमें 4 विषय सनातन है एटर्नल, और 1 विषय है वो बदल सकता है। 5 विषय हैं, एक तो जीव, ईश्वर, माया, प्रकृति और काल। प्रकृति अथवा सृष्टि कह सकते हैं, प्रकृति से कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। तो ये 5 विषय में कर्म सनातन नहीं है। कर्म हमारा हम बदल सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से हम हमारे कर्म दहन कर सकते हैं, कर्म बदल सकते। भाग्य भग भगवान, तो हमारा भाग्य हम बदल सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं बदल सकते। समय जैसे गुजरता है, तो ये समय का कैलकुलेशन गिनती हम कैसे करते हैं? ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का जो अवधि है, ब्रह्मांड की अवधि अथवा अर्थात ब्रह्मांड का जीव समय का समय जीवन, ये अवधि के बाद ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड नष्ट कब होगा? टाइम नष्ट नहीं होगा, ब्रह्मांड नष्ट होगा। ब्रह्मांड क्यों नष्ट होगा? क्योंकि ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मा के 100 साल, ब्रह्मा की गिनती दैविक दैवी वर्ष 100 वर्ष, अर्थली नहीं। यहाँ के टाइम भी जो अलग है और दैवी टाइम भी अलग है, और आध्यात्मिक जगत में टाइम अलग है। आध्यात्मिक जगत में टाइम नहीं है, टाइम सनातन है वहाँ, क्योंकि वहाँ न तो सूर्य उगता है न चंद्र उगता है। न तद भाषयते तद धाम परमम मम, तो वहाँ न सूर्य है न शशांक है, तो वहाँ टाइम सनातन। तो यहाँ टाइम, ये ब्रह्मांड में टाइम की गिनती ब्रह्मा के ब्रह्मा की आयु बराबर होती है। तो ब्रह्मा का दिन कितना होता है? ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युग। चतुर्युग का अर्थ है, चतुर्युग जानते हो, उनका टाइम होता है, ये 4 युग का 1 दिन, ऐसा चतुर्युग का 1 महायुग बोलते हैं, या तो 1 युग गिनना चाहिए, ऐसे 1000 युग अर्थात 4000 युग। तो ये सहस्त्र युग चौकड़ी, सहस्त्र युग चौकड़ी बराबर ब्रह्मा का 1 दिन, दूसरे सहस्त्र युग बराबर ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का 1 दिन हुआ 24 घंटा, और ऐसे 30 दिन का महीना, ऐसे 12 महीने का 1 साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा का आयु, और इतना ये ब्रह्मांड का अवधि है, आयु है। बाद में ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम लव से शुरू होता है, ये टाइम की गिनती है। ओके, लेट्स गो लिटिल फर्दर। माया प्रभव या इसका कृष्ण प्रभव, तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। आखिरी श्लोक संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं अर्जुन जैसे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र क्या होता है? तत्र श्री लक्ष्मी विजय, विजय विक्ट्री, भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये मेरी मति है कि वहाँ विजय होता है। जहाँ भी कृष्ण और कृष्ण के भक्त होते हैं वहाँ विजय होता है। तो ये क्लाउड को हट जाएगा, क्लाउड सबके सर पे आता है, मेरे सर पे भी आया था। तो बाद में वो लोग भक्त बन गए, है ना सब, मेरी मम्मी, मेरे फादर, मेरी सास दीक्षा, गोपाल कृष्ण महाराज से, हिज होलीनेस। तो ये समय की बात है, थोड़ा समय बादल हट जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा ट्रिकी बनना है। मैं भी आपको कहूँगा साथ साथ में कि आपको ट्रिकी, यू नो इंग्लिश में बोलते हैं नॉट टू रॉक ए बोट, बोट को रॉक नहीं करनी चाहिए, जस्ट स्टेडी चलती है चलने देनी चाहिए। तो हमें इन लोगों से, अपने परिवार से, पति या जो भी सास ससुर सबसे हिलमिल जुल के हमें चलना है। तो आपके लिए हम स्पेशल नियम बना सकते हैं, आचार्य कैन चेंज द रूल, डिफरेंट श्लोक फॉर डिफरेंट फोक्स। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग के लिए नियम चालू हो जाएगा। तो आपके लिए नियम हम बदल सकते हैं, वो है आप बाथरूम में भी कर सकती हो, चाहे माला न ले जाओ तो ऐसे करो, बाथरूम में भी कर सकती हो, और बेडरूम अगर अकेली हो तो बेडरूम में भी कर सकती हो। अगर आपको कान में वो ईयरफोन डालने देते हैं तो कोई सुनता नहीं, वो भी सुन सकते हो। तो जितना सुनो आप इतने माला गिन लो, यानी सुनना है तो आप जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे न बोलते हुए यहाँ सुनो, अगर हो सके तो। और सैर करो, बोलो मुझे सैर कंपलसरी है, मेरी हेल्थ बिगड़ती है, तो सैर करने निकल जाओ। तो ऐसे आपको यू हैव टू कट कॉर्नर्स एंड डू इट, हो जाएगा। और इससे अच्छा है आपको, क्योंकि उसमें वीरा वीरा की वेदनाओं में मेरा समय गुजार रही हूँ, और सारे ब्रज में ढूंढ रही हूँ कृष्ण कहाँ है। हे राधे व्रज देविके च ललिते, हे नंद सुनो कुत्ता। ध्यान और प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की तीव्रता, यही हमारा सिद्धांत है। विप्रलंब हमारी सेवा जो है, ये नहीं कृष्ण मुझे मिल गए, कृष्ण मुझे हक कर रहे, ऐसा नहीं। कृष्ण बहुत दूर है और मैं वीरा वीरा की वेदनाओं में मेरा समय गुजार रही हूँ, और सारे ब्रज में ढूंढ रही हूँ कृष्ण कहाँ है। हे राधे व्रज देविके च ललिते, हे नंद सुनो कुत्ता। कहाँ हो हे कृष्ण, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, कहाँ हो कहाँ हो। तो ऐसे विरह में, विप्रलंब में हम सेवा करते हैं, नहीं कि मुझे कृष्ण मिल गया, ऐसा नहीं। तो हमें तो ये भाव अंगीकार करना है, हालांकि आपको तो वो भाव मिल ही गया है, वो परिस्थिति मिल गई है। विरहन पर क्या गुजरी, इन्हों सास देती है ताने, नहीं ननन देती है ताने। और तो ये विरह, मुझे विरहन पे क्या गुजरती है, आप क्या जानो। तो विरह विरह का सॉन्ग है, तो ये हमारा भाव यही है, विरह विप्रलंब। तो हमें तो पैदा करना होता है विरह, सो ये टेक्निक है, सब टेक्निक लगानी होगी, लेकिन सबको साथ में लेके चलना होगा, नहीं तो फिर टेंशन शुरू होगा। इसलिए हमें हिलमिल जुल के जो भक्ति हो, और यू नो हमारे आचार्य गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में जाके माला करते थे। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि लोग बहुत हैरान करते थे, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा शिष्य बनाओ, बाबा मुझे ये करो, मुझे तो हैरान हो जाते थे बाबा जी, इसलिए टॉयलेट में जाके करते थे, पब्लिक टॉयलेट। वो भी पब्लिक टॉयलेट मतलब गंदा से गंदा। तो आपके लिए थोड़ा नियम हम बदलते हैं कि आप बाथरूम में भी गिन सकती हो, चाहे माला न ले जाओ लेकिन हाथ तो ले जा सकती हो। बीइंग ए हाउस वाइफ आपको साथ में चलना पड़ेगा, सब सन्यासिनी तो बन नहीं सकती, स्त्रियों के लिए ऐसे है नहीं, इसलिए स्त्रियों को, और स्त्रियों के लिए पाप भी नहीं है। कृष्ण की क्रिटिसिज्म अगर आप सुनोगे तो आपके लिए पाप भी नहीं है, हमारे लिए है। हम कृष्ण और वैष्णव का कोई अपराध करता है तो हम नहीं सुन सकते, हम पुरुष, लेकिन स्त्री अबला है, अबला अबल ला, तो इसलिए आपको तो घर के साथ चलना होगा और वही सबके लिए अच्छा है। तो ये हमें प्रैक्टिकल बनना होगा। अल्टीमेटली आखिरी में हमें क्या चाहिए? हमें श्री कृष्ण का प्रेम, कृष्ण प्रेम करें, हम कृष्ण को प्रेम करें। तो ये प्रेम तो छिपा कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम में बाधा डाल सकता है, वो तो हृदय की बात है ना? तो उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। माला हमें क्यों करनी है? वो प्रेम के लिए, कि हमारे कृष्ण का प्रेम हमें मिले, इसलिए माला करते हैं। नाम जप हम 16 माला क्यों करते हैं? एक ही मतलब है 16 माला का, कि हमें कृष्ण का प्रेम मिले। तो वो तो मिल ही रहा है आपको, है ना? तो वो जारी रखो, बस वो जारी रखो। तो ध्यान, तो देखो ध्यान ये बहुत बहुत देर की बात है। अभी ध्यान तो हम सबका नहीं होगा, क्योंकि ध्यान उसके ऊपर रहता है जिसमें हमारी दिलचस्पी, प्रेम, जिसमें हमारी आसक्ति हो, है ना? तो अभी हमारी आसक्ति है बच्चों में, नौकरी में, पैसों में, कई कई चीजों की आसक्तियां हैं, और वो आसक्तियां बिगड़ गई, कुछ बिगड़ा तो उसमें ध्यान चला जाए। इसके कोई फैक्ट्री है, आपकी खरबजों रुपया की फैक्ट्री जल गई और फैक्ट्री में आसक्त हो, कैसे ध्यान रहेगा? और आपकी मम्मी पापा, पति पत्नी सब में इतना आसक्ति है, कोई हॉस्पिटल, कोई मर गया, कोई ये हो गया, एक साल तक पति गए चले गए, पत्नी चली गई या पुत्र चला गया, ये चला गया, तो आसक्तियां है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ध्यान लगाना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी, दो चीजें। एक है अभ्यास है ना, तो कौनते वैराग्य न जो उच्चते वैराग्य। तो भगवान के सिवाय किसी और में आपका प्रेम, आपका सब कुछ नहीं होगा, खाली भगवान में ज होगा, तो फिर ध्यान लग जाएगा, क्योंकि उनमें ही आप सारा दिन उनमें ही लगे रहेंगे। लेकिन दूसरी आसक्तियां होगी तो नहीं होगा ध्यान। तो कलयुग का ये लक्षण है कि कलयुग में शॉर्ट ड्यूरेशन, मंद सुमंद मति, मंद भाग्य, रोगिष्ट, ये सब रोग सब कुछ हमें लगा है, इसलिए ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए कलयुग में कहा कि कलयुग में अगर ध्यान न हो तो कोई बात नहीं, केवल कृष्ण का कीर्तन करो। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत भागवत। कलयुग ये दोष का सागर है, कलो दोष निधे राजन, दोष का सागर है, लेकिन उसमें एक महान गुण है। वो महान गुण है कि कीर्तन देव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त परम रजत हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान का नहीं कहा, ध्यान देव कृष्णस्य, मेडिटेशन समाधि देव कृष्णस्य या यज्ञ देव कृष्णस्य, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कीर्तनादेव कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। तो भगवान का नाम हमें करना है, गिनती करके भगवान के नाम गिनना है 16 माला, ये इनका नियम है। बाकी कोई नियम नहीं नाम में, ध्यान करो, ये करो, वो करो, कोई नियम नहीं है। तो भगवान के नामों में भगवान की सब शक्ति का संचार है, इसीलिए नाम में भगवान की सब शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नामों में सब शक्ति का संचार किया है। और ये नाम लेने में नियमित स्मरण न काम, नियमित स्मरण और न काम, नाम करो बस, भगवान का नाम जप करो। तो नाम में शक्ति है, इसलिए वो नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं। इसलिए भगवान का नाम उसे बोलना है, हो सके तो सुनना है, हो सके तो उसके ऊपर ध्यान करना है, लेकिन बोलना है, कीर्तन करना है। तो जैसे उदाहरण दिया गया कि अज्ञानात अथवा भवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यशा अनला। जैसे अग्नि में आप ध्यान से हाथ डालो, ध्यान नहीं है हाथ डालो, जलोगे कि नहीं? नहीं ध्यान है फिर भी जलोगे, और ध्यान है फिर भी जलोगे, क्योंकि अग्नि में जलाने की शक्ति है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के नाम में सब शक्ति है, वो नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा। जैसे कि आपको बुखार है 105 डिग्री और आपको 500 मिलीमीटर की दवाई दिए जाए और आप ध्यान से लो, ध्यान के बिना लो, 500 मिलीमीटर वाली दवाई आपको दे दी तो बुखार मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ध्यान नहीं था, ध्यान था। तो इसी तरह भगवान का नाम मुंह से निकल गया, आपकी भक्ति हो गई, इनको कीर्तन भक्ति कहते हैं। और कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कलयुग में। एक भक्ति से आपका परफेक्शन हो जाएगा, सब भक्ति करने की जरूरत नहीं। नवगा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम पाद सेवनम। नवगा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति, वैया सखी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी को परफेक्शन मिल गई कीर्तन, भागवत का कीर्तन करने से। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कुतो निंद्रा हार विहार कादि विजितव अत्यंत दीनव चयव। संख्या पूर्वक नाम, नाम जप का एकमात्र नियम है, ज्यादा नियम नहीं, एकमात्र नियम है। वो नियम कौन सा? संख्या पूर्वक नाम गिन के कुछ। भगवान जब घर में आते हैं, हमारे गृहस्थ के घर में आते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी गृहस्थ के मुताबिक चलते हैं, गृहस्थ के स्केड्यूल से चलते हैं, गृहस्थ के मुताबिक वो चलते हैं। और जब मंदिर में होते हैं, शिखरबंदी मंदिर होते हैं ना, जैसे इस्कॉन का मंदिर है, तो वहाँ पुजारी भगवान के स्केड्यूल के अनुरूप चलता है, उल्टा। पृच्छति और सुनना और पूछना, और ददाति प्रतिगुणाति गुह्य माख्याति। गुह्य गुहा, गुदा गुहा किसको कहते हैं? हृदय को। तो गुह्यम आख्याति, हृदय के भाव दूसरे भक्त को बताना ही पड़ेगा, हृदय के। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कौन? हमारे आचार्य, हमारे आचार्य रूप, ओरिजिनल आचार्य, मूल आचार्य, रूपानुग है हम लोग। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? हमारे भाव, मुझे आज इतना सुंदर स्वप्न आया, उनको आपकी सहेली को बताओ कि राधा रानी मुझे हाथ पकड़ के ले जा रही थी कुंज निकुंजों में, और ऐसा वैसा वैसे ऐसे भाव हमारे जो है वो भक्तों को बताना चाहिए। लेकिन सारे सब सारा समुदाय को वो बताओ, जो आपके निकट के जो आपको समझ सकते हैं उनको बताओ। गुह्य माख्याति पृच्छति, उनसे पृच्छा करना चाहिए, और भूंगते उनको प्रसाद खिलाना चाहिए भक्तों को, और भक्तों का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, गारंटी। तो जैसे आपका बच्चा हो है ना, दो पांच महीने का, छह महीने का, साल का, तो उनको आप क्या करते हो? वो करना चाहिए, या तो साथ में ले जाओ, या तो कोई अच्छी मम्मी या सास, और अर्च विग्रह घर के जो ठाकुर होते हैं वो भगवान भार रूप नहीं है, भाव रूप है। तो आपके भाव के मुताबिक उनको किसी को दे सकते हो, या तो साथ में लेके, या तो भाव से भक्ति से उनकी सेवा करो, फ्रूट या मिश्री या कुछ सुबह शाम दें, या दिया या अगरबत्ती करें। भगवान आपको दुखी करने के लिए नहीं आते घर में, भगवान आपको सुखी करने के लिए आते। तो ऐसी अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। चाहे एक दो दिन सेवा छूट भी गए तो सुला लो, उनको सुला दो। जैसे आपका किसी का सबसे प्यारा कोई संबंधी चल बसा, तो ऐसी आसक्ति है तो सूतक लगेगा, तो 15 दिन क्या करोगे? दूसरे को दे सको तो ठीक है, नहीं तो मूर्ति को आप सुला सकते हैं और मानसी सेवा कर सकते हैं। तो ये जीवों को भगवान ने ये दो चीजें दी है, इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता जो भगवान भी नहीं छीन सकते। अगर ये दोनों चीज मनुष्य में, जीव में से, जीवात्मा से, प्राणियों में से निकाल दो तो सब रॉबर्ट बन जाएंगे, है ना। जैसे कुम्हार के सारे बर्तन जैसा बनाता है ना कुम्हार, वैसे बर्तन जैसा हम लोग सब बन जाएंगे, है ना। नो इच्छा नो स्वतंत्रता, तो ये दो चीजें हैं जीवों से भगवान छीन नहीं सकते। ये जीव का प्रेरोगेटिव है जो भी हिंदी, तो ये जीवात्मा को स्वतंत्रता है माइन्यूट छोटी सी। तो भक्ति का अर्थ है कि प्रेम, तो कोई भी किसी को जबरदस्ती से प्रेम नहीं करवा सकता, करवा सकता और करवा भी देगा तो कितना चलेगा, कितना चलेगा। भगवान तो प्रेम करते हैं, हम सब जीवात्मा से भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती से उनको प्रेम करवा नहीं सकते, है ना। आपका बेटा है कृष्ण, कृष्ण को आप बोलो जबरदस्ती से मुझे प्रेम कर, मुझे प्रेम कर, पत्नी को पिटाई करके बोलो मुझे प्रेम कर, मुझे प्रेम कर, हो सकता है? प्रेम जबरदस्ती से नहीं हो सकता। प्रेम ये उनकी प्रॉपर्टी है और वो प्रेम देना चाहे तो दे सकता, नहीं देना चाहे तो कभी नहीं दे सकता, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो भक्ति ये प्रेम है, भक्ति देके तो भेजा है, लेकिन हम देते नहीं उनको प्रेम। तो स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति ये दोनों होने से सब जीवात्माएं भक्ति नहीं करते। फिर से दूसरा उदाहरण कि जो वंदना है, कृष्णा को जन्म दिया, क्यों जन्म दिया, इसीलिए जन्म दिया कि कृष्ण भी खुश और मैं भी खुश, है ना। सब बच्चे क्यों चाहते हैं, अपने आनंद के लिए। आपने कुछ भी आप पैदा करते हो क्यों, अपने आनंद के लिए। तो भगवान ने हमें पैदा किया क्यों, भगवान के आनंद के लिए, है ना। लेकिन हम भगवान को आनंद नहीं दे रहे हैं, इसलिए भगवान भी दुखी है और हम भी दुखी हैं। इसलिए भगवान भक्तों को भेजते हैं, भगवान शास्त्र बोलते हैं, भगवान मूर्तिमंत होके मूर्ति बन के द्वारकाधीश, केशव देव, जगन्नाथ वगैरह मूर्ति बन जाते हैं भगवान आनंद देने के लिए। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, भगवान ने हमें क्यों बनाया, आनंद के लिए, उनको भी आनंद हमें भी आनंद। लेकिन हम कहते हैं ऐसा कि इनको स्वतंत्रता साथ में क्यों नहीं, दुर्गा वगैरह तो कर सकते हो साथ में, लेकिन सबका स्थान समझना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एक भगवान है, वो कृष्ण है और देवी देवताएं उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनके भृत्य है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर इच्छाएं नाचिय भय तारे करे नृत्य। सब देवी देवताएं श्री कृष्ण के भृत्य सेवक हैं, भक्त हैं। तो भगवान से कृष्ण की पहले सेवा करो, बाद में उनका प्रसाद सबको बांटो। जैसे भोग लगाना है तो भगवान को भोग लगाओ, कृष्ण राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मण हनुमान, और बाद में सब देवी देवताओं दुर्गा शंकर ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य सबको, सब 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ भक्त भगवान नहीं है, भगवान कितने हैं, वो कौन है,
कृष्ण।
ऐसा क्यों, कृष्ण ही क्यों भगवान है, क्योंकि वो भगवान है। शास्त्र साधु और गुरु के मुताबिक एक ही भगवान है, वो है कृष्ण, और सारी देवी देवताएं उनके असिस्टेंट है, मदद भक्त है, मदद निश है। तो उनकी सेवा पहले करो, बाद में देवी देवताओं की सेवा करो, हौसला से आरती उनकी पहले करो, बाद में सबकी आरती दिखाओ सबको। हम इस्कॉन में भी राधा कृष्ण की आरती करते हैं, बाद में बाहर आके ऐसे नहीं करते, तो वो भक्तों को अर्थात देवी देवताओं को, भक्तों को, सबको, सबकी आरती करते हैं बाद में। कि ये बच्चा कहता है माँ मुझे नहीं चाहिए, पिता मुझे नहीं चाहिए, जैसे वो वापस आता है माँ और पिता उनको स्वीकार कर लेंगे, तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, गाली दी थी, भाग गया था, आपने मेरी पिटाई की थी, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसी तरह कृष्णा खुले हाथ खड़े हैं हमारे लिए, आओ बेटे आनंद करो, मेरे साथ मौज करो, मेरे साथ प्रेम करो मेरे साथ, लेकिन हम उल्टे, तो भगवान क्या करे, आपकी स्वतंत्रता तो नहीं छीन सकते, न आपका इच्छा शक्ति छीन सकते। तो आप इच्छा बदलो और आपकी स्वतंत्रता बदलो और भगवान को उन्मुख हो जाओ, हो गया काम। लेकिन हम रिबेलियस, ज्यादातर लोग रिबेलियस भगवान को हमारे भगवान है कृष्ण, और कृष्ण का दो काम है, मौज करना, बस क्या करना, मौज आनंद। वो रसिक शेखर है, रस का आस्वादन करते रहते हैं, और कुछ नहीं करते भगवान कृष्ण, समझे ना, आनंद उनका और कोई काम नहीं है, कृपा भक्तों पर, ये दो काम। तो भौतिक जगत उनको बनाना ही पड़ा, क्योंकि कई जीव अनादि काल से भगवान से उल्टे चले, उल्टे तो बोलते हैं हमें ईश्वर, हम ईश्वर हैं, हम भोक्ता हैं, हम भगवान हैं, भगवान से अलग वो आनंद करना चाहते थे, तो इसको बोलते हैं माया, या उसको बोलते हैं अंधकार। तो इसीलिए ये भौतिक जगत अंधकार जगत सुधारक केंद्र है, तो भौतिक जगत भगवान को बनाना पड़ा। तो भौतिक जगत का सर्जन, भौतिक इंद्रियां बनानी पड़ी, भौतिक पदार्थ बनाने पड़े, भौतिक भूतों को भूत बनाने, मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार बनाना पड़ा, भौतिक विषय बनाना पड़ा। क्यों? जीवों की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सब बनाना पड़ा। तो ये बनाने के लिए भगवान कृष्ण, तो वो तो मौज करते हैं, वो कब बनाएंगे? तो उनका विस्तार, स्वामस बलराम संकर्षण, दूसरा संकर्षण, और संकर्षण में से कर्णो दक्षिण विष्णु, में से गर्भो दक्षिण विष्णु, शिरो दक्षिण विष्णु, तो ये तीनों विष्णु इसीलिए विस्तारित हुए कि ये भौतिक जगत का निर्माण और उनका पालन हो। तो कृष्णा इन चीजों में नहीं पड़ते, वो आनंद, तो तीनों विष्णु। तो ये आपको समझाएंगे। और कोई सवाल?
जैसे हम भौतिक जगत में रहते हैं, समय अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है, हम भक्ति करते करते यदि हमें इस पर समय बुरा गया, तो क्या हमें उसके निदान के लिए जैसे ये ग्रह दोष निवारण ये सब भी कर लेना चाहिए, या सिर्फ भक्ति पे ही अपने वाचित रखना चाहिए?
भक्तों को बुरा समय पहले तो आता ही, ये आपकी माया है, ये आपकी अज्ञानता है। जीव आनंदमय अभ्यासात वेद, जीव का स्वभाव क्या है? आनंद। लेकिन माया के आवरण से वो दुखी होता है, अज्ञानता। माया का आवरण का अर्थ है अज्ञानता, अज्ञानता से। अगर जीव आनंदमय ही है तो उनको दुख क्या, खराब समय क्या, हर परिस्थिति में भक्त आनंदित रहता है। जैसे हमारे सद गोस्वामी गण है, तो सब कुछ था क्या नहीं था, और कितनी राशि में था, जैसे कि राजा हो, खरबजों की संपत्ति सब कुछ, और अप्सरा हो जैसी पत्नी, कैसी पत्नी, अप्सरा, अप्सरा जैसी पत्नी है। तो पैसा और स्त्री में सबकी आसक्ति, पुरुष में स्त्री वैसे वैसे, तो ये आसक्ति होती है। तो ये सब छोड़ के वृंदावन में इतनी ठंडी में कोपिन ने कंठा, कोपिन मतलब लुंगी छोटी, यहाँ तक की लुंगी, और तो सब कुछ छोड़ के ये जीवन अपनाने की जरूरत क्या है? आनंद है उसमें, आनंद। कभी भी भक्त दुखी नहीं होता, लगता है कि घाटा, लेकिन घाटा नहीं है, ये सब जंजाल है। तो आहिस्ते आहिस्ते हमें विरक्ति लाना है और भगवान में जोड़, भगवान में जुड़ना है। ये सब भौतिक आसक्तियां है, और हम भौतिक है नहीं, शरीर भौतिक है, लेकिन हम शरीर है नहीं, हम आत्मा है। और आध्यात्मिक स्तर पर आनंद ही आनंद है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आध्यात्मिक स्तर पर आनंद के सागर का वर्धन होता जाता है। तो ये आठ सत सात्विक भाव है, हमें ये चाहिए भगवान के प्रेम में। किसी के प्रेम में जैसे कोई रोते आंसू आते हैं, जैसे आपके पति को 50 साल के बाद परदेश से वापस आते हैं, तो आपको भाव, प्रेम के आंसू है ना, तो ये भाव है आपके, तो भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नित्यानंद के बारे में बताऊं थोड़ा सा, नित्यानंद कौन है पहले ये समझना चाहिए। तो नित्यानंद है श्री कृष्ण, एक भगवान है, उनका पहला विस्तार जो है वो है बलराम, बलराम में से विस्तार होता है फर्स्ट क्वाड्रुपल चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध और वासुदेव। तो वो संकर्षण और वो चतुर्व्यूह गोलोक वृंदावन में विस्तार होता है उनका, भगवान के स्व अंश है, स्वामस, हम जीवात्माएं विभिन्न अंश हैं। तो फर्स्ट चतुर्व्यूह वो संकर्षण में से, दूसरा चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, तो वो वैकुंठ में उनका विस्तार होता है, वो गोलोक में विस्तार, ये दूसरा चतुर्व्यूह वैकुंठ में। और वो संकर्षण में से तीन पुरुष का विस्तार होता है, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये बलराम जो है यही नित्यानंद है, बलराम और नित्यानंद में भेद नहीं है। जैसे वो ही कृष्ण द्वापर में यहाँ जब आए तो वो कृष्ण में और वो गोलोक वृंदावन के कृष्ण में भेद नहीं है। इसी तरह जब ये कलयुग होता है तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही बलराम कलयुग में नित्यानंद के रूप में आते हैं, वही। तो वो है नित्यानंद, अर्थात नित्यानंद की पोजीशन ये है कि कृष्ण एंड बलराम, तो चैतन्य महाप्रभु एंड बलराम, और रामचंद्र रूप में आए श्री कृष्ण स्वांश, तो बलराम लक्ष्मण के रूप में है लक्ष्मण। तो ये है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु की कई लीलाएं हैं कि एक तो एक चक्र नामक उनका गांव है, वो एक चक्र में उनकी कई लीलाएं हैं, उनकी नाटक की लीलाएं हैं, और वो सन्यासी के साथ उनके पिताजी उनको दान दे देते हैं नित्यानंद को, नित्यानंद सन्यासी के साथ घर छोड़ के जाते हैं, तो और बाद में नित्यानंद वापस आते हैं मायपुर यशोदा नामक जगह पर, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की भेंट होती है। बाद में नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेते हैं तो सन्यास के वक्त नित्यानंद अद्वैत आचार्य के घर उनको ट्रिक करके ले जाते हैं, और वहाँ तीनों ठाकुर अद्वैत आचार्य नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाते हैं, और बाद में जगन्नाथपुरी ले जाते हैं, और हर साल जगन्नाथपुरी नित्यानंद और शिवानंद सेन सब भक्तों को रथ यात्रा में लेके जाते थे, तो वहाँ शिवानंद सेन थोड़ा सा मैनेजमेंट में डील हो गई तो नित्यानंद उनको छाती में लात मारते और गुस्से होते हैं, तो शिवानंद सेन क्या करते हैं, इतना खुश होते हैं कि हमें कोई लात मारेगा, हम हर साल बड़ी बड़ी व्यवस्था निशुल्क व्यवस्था करें और कोई आके लात मारे आपको छाती में, तो तुरंत इतना मैं करता हूँ हर साल करता हूँ, थोड़ी सी हो गई ढील उसमें इतना बड़ा, तो ऐसा कर। लेकिन ऐसा शिवानंद बोलते हैं कि मेरे पर कितनी कृपा हुई, आज कितनी कृपा हुई, असीम कृपा हुई मुझे नित्यानंद, तो पॉजिटिव। या भगवान कुछ ऐसा करते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, कृपा, तो डांस करते हैं शिवानंद सेन, तो पॉजिटिव लेते हैं कि नित्यानंद की कितनी कृपा हुई मेरे पर। बाद में नित्यानंद की लीलाएं हैं जीव गोस्वामी के साथ, वो सारे नवदीप मंडल की परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा आज भी हम इसको और गोड़िया वैष्णव भक्त लोग करते हैं। बाद में नित्यानंद की लीलाएं हैं कि प्रचार करने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए बंगाल भेजते हैं, तो जगाई मदाई के साथ उनका दुर्व्यवहार, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को याद दिलाते हैं कि आपका ये अवतार ही अवतार है, उदारता, उन लोगों का दोष नहीं देखना, हर व्यक्ति कलयुग में दोषी है, तो हर व्यक्ति को आप उदारता से कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हो, याद दिलाते हैं। तो ये लीला है, और उनकी शादी की लीला है, जानवा मदर जानवा और वसुंधरा से उनकी शादी हुई। तो कथा को विराम देंगे।